गोपी जाना वाला गिरिवर धारी जय गोपी जाना वाला गिरिवर धारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shama Sundara, Radha Shama Sundara Radhe. Jaya Gora Nitai, Jaya Gora Nitai, Gora Nitai, Jaya Gora Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
Jaya Gantra Srimad Bhagavatam ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. युगधर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 8, अध्याय 9 श्लोक संख्या 10। मोहिनी मूर्ति के रूप में श्री भगवान का अवतार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो श्लोक है, 10 और 11। 10 मैं पढ़ता हूँ, 11 हम साथ में पढ़ेंगे। साला वृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरीणाम सुरदीशः संख्यान्याहुरी नित्यानि नूतनं विचिन्वताम्। शब्दार्थ साला वृकाणाम, या इसका हम छोड़ सकते हैं, राइट? हाँ, ऐसा क्या? ओके, मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। हे असुरो, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और रोज ही नया नया साथी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियाँ स्वच्छंद होती है वे नित्य नया साथी ढूंढती है। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का अभिमत है। तो ये भगवान ही बोल रहे हैं मोहिनी मूर्ति रूप में। अगला श्लोक ये हम पढ़ेंगे साथ में। शिशुक उवाच इति ते श्वेलितैस्तस्या, इति ते श्वेलितैस्तस्या आश्वस्त मनसो असुराः, आश्वस्त मनसो असुराः जहसुर्भावगम्भीरम् ददुस्वामृतभाजनम्। श्रीशुक उवाच इति ते श्वेलितस्तस्या आश्वस्त मनसो असुराः जहसुर्भावगम्भीरम् ततुश्चामृतभाजनम्। शिशुक उवाच मनसो दुस्सामृतभाजनम्। शिशुक उवाच इति ते श्वेलितैस्तस्या आश्वस्त मनसो असुरा दुस्सामृतभाजनम्। शिशुक उवाच स्वस्थ मनसोसुरासुर्भावगम्भीरम्भाजनम्। श्रीशुक उवाच अस्वस्थ मनसोसुरासुर्भावगम्भीरम्। माता जी इति ते श्वेलितैस्तस्या अस्वस्थ मनसो असुरा असुर्भावगम्भीरम् तस्यामृतभाजनम्। शिशुक उवाच इति ते श्वेलितैस्तस्या स्वस्थ मनसो भवा। शब्दार्थ श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार ते वे असुर श्लेलिते मानो परिहास करने से तस्याह मोहनी मूर्ति के आश्वस्त कृतज्ञ विश्वास युक्त मनसः मनो से असुराः सारे असुर जहसुः हंस पड़े भाव गंभीरम। यद्यपि मोहिनी मूर्ति गंभीर थी ददुह दे दिया च भी अमृत भाजनम अमृत का पात्र। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा मोहिनी मूर्ति का परिहासपूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। कृपया दोहराइए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा मोहिनी मूर्ति के परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। तात्पर्य मोहिनी का रूप धारण किए हुए श्री भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे वरन गंभीर बातें कर रहे थे, लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक लक्षणों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे और उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है जो समोहाय सुरद्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई। सुरद्विषाम शब्द उनका सूचक है जो देवताओं या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कर रही थी किंतु वे उसके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया। मानो वे उसे यह छूट दे रहे हों कि वह इस अमृत का चाहे जो करे, चाहे बांट दे चाहे फेंक दे या उनको दिए बिना स्वयं ही पी जाए। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये कई अध्याय से ये कथा चल रही है दानवों और देवताओं का जो झगड़ा हुआ और देवलोक परास्त हो गए, कमज़ोर पड़ गए, तो उनकी आदत है कुछ भी तकलीफ है तो कहाँ जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो पहुँच गए ब्रह्मा जी के पास और फिर भगवान प्रकट हुए और सब समझाया कि इतना भौतिकता में मदोन्मत नहीं होना चाहिए, सब शक्ति तो भगवान ही देते हैं, तो उसको भगवान की सेवा में लगा के रखेंगे तब तक तो सुरक्षित हैं, और जहाँ स्वयं इंद्रिय भोग करना का सोचेंगे वहाँ मन रूपी जो दानव है वो हमारे पे विजय प्राप्त कर लेता है और हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। लेकिन ये विशेषता है देवताओं की कि कोई भी विकट परिस्थिति होती है तो वो भगवान के पास पहुँच जाते हैं, इसके लिए तो सराहा गया उनको भागवतम में, एनीथिंग हैपन्स विष्णु, तुरंत भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो ये अच्छी शिक्षा है हमारे लिए कि भले हम कुछ भी गलतियां कर दें लेकिन भगवान के पास पहुंचना चाहिए तुरंत। तो भगवान ने उनको समझाया कि आप अच्छा मित्रता कर लो, क्योंकि अकेले कर नहीं पाओगे तो दानवों के साथ मिलकर कार्य करो, और प्रोत्साहित किया, पूरा कथा हम सुनते आ रहे हैं। तो फिर समुद्र मंथन का कहा गया, समुद्र मंथन में क्या क्या होगा, गुस्सा मत करना, शांत रहना, जो भी कोई ले लेने देना, चिंता मत करना, ऐसा बहुत समझाया। ऐसा हम सबको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि देवताओं को समझाया जा रहा है, ये हम सबको समझाया जा रहा है, चिंता मत करो, गुस्सा मत करो, भगवान ने बोला वो करते जाओ बस, दैट इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड। यही हमसे अपेक्षा की जा रही है कि जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं उसके अनुसार कार्य करते जाएं। फिर बोला ये पहाड़ ले आओ, मंदर पर्वत, राइट, तो उसको ला नहीं पाए, थक गए, देवी देवता देव और दानव साथ में कार्य कर रहे थे लेकिन टूट गए शरीर, कई हो गए, कई मर गए। फिर वापस भगवान को बुलाया गया तो भगवान आके उसको भी गरुड़ जी ने उठा के रख दिया, सोचो आप। हाँ, भगवान एक पक्षी जो भगवान का वाहन है उसने पूरा आराम से उठा के उसको रख दिया, और ये सारे देवी देवता और दानव मिलके कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो कितना भी शक्ति हमारे पास आ जाए लेकिन वो कमी पड़ने वाली है, ये समझना चाहिए हमको। जब भी हम सोचते हैं कि हम अभी क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, तो मतलब हम पतन हो रहे हैं, अभी हमारा पतन शुरू हो गया। जब हम सोचते हैं स्वतंत्र हो गए, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारा घर है, सब व्यवस्था हो गई है, अभी आई डोंट नीड एनीबडी, सब टूटना फूटना शुरू होता है फिर। जैसे देवता टूट रहे थे, दानव मर रहे थे, तो फिर भगवान ने मदद की। भगवान तो बड़े परम दयालु हैं, कितनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते रहे हम, लेकिन भगवान तो अपना कार्य जारी रखते हैं। तो पहाड़ रख दिया, फिर पहाड़ को मंथन शुरू किया वसुकी से, फिर नहीं कर पाए क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो रहा था। फिर भगवान को बुलाया, भगवान ने बैलेंस किया, नीचे कछुए के रूप में गए, ऐसे करते करते भगवान ने अंत तक उनकी मदद करते गए। फिर विष निकला तो शिव जी ने आके उसको ग्रहण किया, फिर अमृत निकला तब भी समा, फिर भी झगड़ा तो चालू ही है अभी इसका क्या करें। फिर भगवान प्रकट हो रहे मोहिनी मूर्ति के रूप में, तो ये इस अध्याय के अंदर लिखा है, मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान का अवतार। तो यह मोहिनी मूर्ति इसके आगे के श्लोक में 10 नंबर जो हमने पढ़ा उसमें वो सॉरी 9 नंबर में, मोहिनी रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रो, मैं तो मात्र एक वैश्या हूँ, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो, विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करता। तो ये सब बातें जो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, तो इसको ये समझ रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं देवता लोग, दानव लोग क्या समझे, मोहिनी का रूप धारण किए हुए श्री भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद पहली पंक्ति में बताते हैं, शी वॉज नॉट इन अ जोकिंग मूड, ये बहुत सीरियस बात भगवान अंकित कर रहे थे, लेकिन वो इतने मदोन्मत थे कि समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो क्या रहा है। देवर इतना परिश्रम किया, पता नहीं इसमें वर्षों का तो वर्णन नहीं है, लेकिन आई एम श्योर इसको काफी लंबा खींचा होगा भगवान ने, इतना आसानी से तो अमृत दिया नहीं होगा। तो वो कर करके इतना मेहनत जो किया और जो प्राप्त हुआ वो तुरंत थमा दिया सामने। स्त्री को इतने आकर्षित हो गए स्त्री से कि एवरीथिंग जस्ट सरेंडर्ड। और सोचो भगवान को कुछ देना होता तो कितना श्रम पड़ता है, अभी तो ये भगवान समझ के शरणागत छोड़ा नहीं है, ये तो एक सुंदर स्त्री से आकर्षित होके सब निछावर किया गया इधर कि भैया जो करना है करो, तुम बांटो फेंको, तुमको पीना तुम पी जाओ, जो करना है करो, वी आर सरेंडर टू यू, हम पूर्ण शरण, कौन सा श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ त्याग कर रहे हैं हम आपकी शरण में। तो लेकिन ये करना कितना मुश्किल है जब भगवान के लिए करना होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बोलते हैं ना, इस्कॉन में जन्म लिया है तब से ये श्लोक सुनते आ रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर वर्स है, राइट, शायद प्रभुपाद सबसे ज्यादा बोले होंगे इस श्लोक को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है समझना कि भगवान को सब कुछ दे दो लेकिन छूटता नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये अच्छी शिक्षा है, भले इन्होंने जो भी सोच के छोड़ा लेकिन सामने थे तो भगवान ही, तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि छल नहीं है। ये अवतार मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किए श्री भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वरन गंभीर बातें कर रहे थे। सो कृष्णा वॉज वेरी सीरियस, हम बड़े गंभीरता से उनको समझाने का प्रयास करके मेरे पे कैसे विश्वास कर रहे हो, हाउ यू आर पुटिंग योर फेथ इन मी। लेकिन हम देखते हैं कि गीता का एक श्लोक है, हम पढ़ेंगे बाद में इसको, अभी नाउ वी कैन डू द्यूताम छलयताम अस्मी। इसमें भगवान बताते हैं कि आई एम द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है, भगवान बताते हैं इसमें, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में कि कई प्रकार के छली व्यक्ति इस ब्रह्मांड में है और जितने भी तरह की विधियां हैं छल करने की उसमें जुआ सर्वोपरि है। तो भगवान खुद को जुए के साथ तुलना कर रहे हैं इधर, इसलिए वो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। और कृष्ण जितना मूर्ख बना सकते हैं, जितना छल सकते हैं, उतना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो कई लोग सोचते हैं कि वो भगवान कृष्ण को छल कर सकते हैं और ऐसी लोगों के सामने व्यक्त भी करता है ऐसा भाव, लेकिन कृष्ण से बड़ा छली व्यक्ति और कोई नहीं है। और इतना दूर ले जाते हैं भगवान कृष्ण, वो छलते हैं तब कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वो छला जा रहा है, ही कैनॉट इवन अंडरस्टैंड कि उसको चीट किया जा रहा है, वो सोचता है तो सही चल रहा है सब, जैसा ये अभी इधर हो रहा है, उनको तो लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है जीवन, इतना मेहनत करके अमृत निकाला, बोले ले लो, नो प्रॉब्लम, उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीटिंग हो रही है उनके साथ, वो समझ नहीं पा रहे हैं दानव कि भगवान छलने आए हैं उनको, और ये सारा चला जाएगा किसके पास, देवताओं के पास चला जाएगा, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, सो इज द मोस्ट एक्सपर्ट चीटर। तो अगर कृष्णा किसी को छलने का सोचते हैं तो हमारी समझ के पार हो जाएगा, इतनी आगे तक भगवान हमको छल सकते हैं। सो भगवान केवल एक तरह से नहीं, हर तरह से नंबर वन है, कृष्ण इज बेस्ट इन ऑल डायरेक्शन। माखन चोर करना है तो भी नंबर वन है, नोबडी कैन डू दैट, कितना भी योजना बना लो लेकिन कोई बचा नहीं पाता था, भगवान को जो करना था वो कर लेते थे। सो इन सब कथाओं से, माध्यम से यही समझना है कि हम किसके सामने होशियारी कर रहे हैं, टू हुम वी आर ट्राइंग टू बी इंटेलिजेंट, बिफोर हुम, हमारी क्या औकात है, व्हाट इज अवर कैपेसिटी टू चीट द लॉर्ड। हम जैसे गुरु को भी कई हम वचन दिए हैं, गुरु को भी कुछ प्रण लिए हैं गुरु के सामने भी, तो हम अगर हम चीट करते हैं तो किसको चीट कर रहे हैं, अगर हम छलने का प्रयास करें तो कौन छला जा रहा है, हैं, हम स्वयं छले जा रहे हैं। यू कैन नॉट चीट स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा, आप स्वयं गुरु या भगवान को छल नहीं सकते हो, कितना भी प्रयास कर लो आपका। लेकिन जैसा इसमें लिखा है ये श्लोक में भागवत गीता के 10.36 कि भगवान जब छलते हैं तो हमको समझ में ही नहीं आता कि हम छले जा रहे हैं, तो हमको लगता है मैं बुद्धिशाली हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम, ये समस्या है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम हर क्षण हमारा जीवन नष्ट हो रहा है और हम फिर भी इंद्रिय भोग की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, यहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है ना दानव को, इतना मेहनत किया पूरा जीवन, भारी पहाड़ उठाया और फिर वो जब उसको कर रहे थे तो गर्म हवा फेंक रहा था, राइट, अग्नि उगल रहा था वसु की, तो हर तरह से तपाया जा रहा था लेकिन बोले छोड़ूंगा नहीं, और जब मिल गया तो भगवान ने इतना इंटेलिजेंटली वो घड़ा भी ले लिया, बोलता है जो करना है करो। सो कृष्ण इज सुपर चीटर, जब वो छलने लगेंगे तो समझ में नहीं आता हमको, तो ये चल रहा है हमारे साथ, अब ऐसा मत सोचिए कि कल दानों के साथ हो रहे, पूरे दुनिया के साथ यही चल रहा है। अभी हम हर हमेशा प्रयास करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंततः परिणाम तो यही आ रहा है कि हम चले जा रहे हैं। अगर हम इस कृष्ण भावनामृत के और अग्रसर नहीं हो रहे हैं, हमारी चेतना को कृष्ण की ओर नहीं लगा रहे हैं, सो उसका विपरीत परिस्थिति केवल छल है। वी आर गेटिंग चीटेड। तो हम शास्त्र में भी देखते हैं, भगवान ने जो बुध अवतार, इसमें बुध अवतार का वर्णन करते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, तो बुध अवतार भी एक रूप से छल रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत पशु का वध हो रहा था। तो भगवान बुध अवतरित होते हैं और वो भगवान के रूप में भी नहीं आते हैं, ना वो कोई शास्त्र का कथा, वो शास्त्रों का भी खंडन करते हैं, तो ना कोई उन्होंने शास्त्र का समर्थन लिया, रादर शास्त्र का खंडन किया। और उन्होंने अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मों की स्थापना करते हैं, वही उद्देश्य होता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति शास्त्र का दुरुपयोग कर रहा था, ब्राह्मण लोग, और पशु हत्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। सो ये बुध अवतार में भगवान खुद को भगवान की तरह ना बताते हुए हैं, नोबडी, कोई जानता नहीं था वो भगवान है, लेकिन भागवतम में इसको पहले ही उल्लेख है, इसलिए हम जानते हैं। भागवतम तो 5000 वर्ष पहले लिखी गई और बुध अवतार तो अभी 2500-3000 साल हुआ है, अभी हुआ है, राइट। सो भागवतम की ये भविष्यवाणी थी कि बुध अवतार होगा, इसलिए हम वैष्णव लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, इस कथा से समझते हैं कि ये भगवान है, बुद्ध भगवान। लेकिन अभी जो बुद्ध के अनुयायी है, वो तो खुद को भगवान नहीं समझते और ना इसको अहिंसा परमो धर्मो को स्थापित कर पा रहे। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर ये लोग इतना भी कर दे तो बहुत अच्छी बात है कि हत्या तो बंद करे, लेकिन हत्या तो चल रहा है पूरे विश्व में, एटलीस्ट उनको ये तो करना चाहिए कि जीव हत्या बंद करवा दे। सो प्रभुपाद सेड लाइक दिस वंस, बट ये कोई कर नहीं रहा है, कोई गंभीर नहीं है इसके अंदर। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि शंकराचार्य, पद्म पुराण में हम सुनते हैं कि भगवान शिव स्वयं मायावाद का प्रचार करते हैं, उनका उद्देश्य होता है वापस शास्त्रों को स्थापित करना। तो वो वेद और शास्त्र के अनुसार मायावाद का प्रचार शुरू किया, क्योंकि वो बुद्धिज्म को खत्म करना चाहते थे। सो और ये क्यों हुआ, क्योंकि दक्ष ने अभिशाप दिया था शिव जी को, क्योंकि जब दक्ष वो यज्ञ कर रहे थे तो शिव जी के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी, जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे, उनके बीच में कुछ घर्षण होता है, और उस समय ये अभिशाप दिया जाता है कि भाई तुम्हारे सब जो है वो नास्तिक बन जाएंगे। तो ये बेसिकली नास्तिकतावाद का प्रचार किया भगवान शिव ने, तो और शास्त्र को बेस बना के, सोचो शास्त्र के जरिए शास्त्रों का खंडन किया गया है, क्योंकि उसमें भगवान का स्वरूप को तिरस्कृत किया गया है। तो इस प्रकार से कई तरह से शास्त्र में हम देखते हैं, कई कथाएं हैं जिसमें विपरीत शिक्षा दी गई है ऐसा दिखता है, लेकिन वस्तुतः परिस्थिति ये है कि उस समय की जो जीव थे वो कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस प्रकार से हर प्रचारक उतना ही उपदेश करता है कि उनके अनुयायी उसको समझ सके, तो कृष्ण भावनामृत के लिए वो तैयार नहीं थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी नहीं दिया कलयुग में, उन्होंने बोला समय तो है नहीं, क्योंकि दो वक्त का भोजन इकट्ठा करने में पूरा जीवन चले जाने वाला है, फिर परिवार घर बनाना है, बच्चे बच्चियों की शादियां, हर चीज का प्राधानता रहने वाला है, छूटने वाला नहीं है किसी से। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र महाप्रभु ने दे दिया कि भाई इसको जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये बड़ी एक विशेष कृपा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, कि हम लोग ये चिंतामणि स्वरूप हरे कृष्ण महामंत्र के संपर्क में आए। तो इसके माध्यम से हम भगवान की जो वास्तविकता है उसको समझने की चेतना को विकसित कर सकते हैं। ये कहीं लेके जा रहा है हमको, ये सूचना हमको कहीं लेके जा रही है भगवान की ओर, कैसे जाया जाए उसका सूचन हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा कहा जाता है कि हम जो चाहते हैं भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान, मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस। तो अगर आप कुछ गलत चीजों की इच्छा करोगे तो भगवान तो वो भी दे देते हैं. ही इज नॉट इंटरफियरिंग. कृष्णा डजंट इंटरफियर इन एनीथिंग. सो ही इज वेरी मर्सीफुली. इस प्रकार से वो चीट कर रहे हैं ऐसे देखें तो. दिस इज द वे ही इज चीटिंग बिकॉज वो चाहते हैं कि हम शुद्ध हो जाएं और शुद्ध होकर उनकी शरण में जाएं. और अन्याभिलाषिता शून्यम. हमने बहुत बार सुना है कि और कोई इच्छा नहीं करना है, केवल एक ही इच्छा करना है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न कैसे किया जाए, गुरु को प्रसन्न कैसे किया जाए. लेकिन इसको कर पाना इतना आसान नहीं है. इसमें बहुत संघर्ष और चुनौतियां जीवन में चलती रहती है और हम इसको छोड़ के सब कुछ कर लेते हैं. क्योंकि चार मुख्य खामियां हम सब में हैं. सुना है आपने, चार खामी है, राइट? पहला है, उसमें से एक छलना भी एक वृत्ति है हमारे में, राइट? सो ये छलने की वृत्ति के कारण हम सोचते रहते हैं कि किस प्रकार हम अधिक से अधिक वस्तुएं प्राप्त कर लें, किस प्रकार हम अधिक से अधिक आराम प्राप्त कर लें. लेकिन वस्तुतः परिणाम कुछ और ही आ रहा है. जितना हम प्रयास कर रहे हैं वस्तुओं को अर्जित करने के लिए, सुख सुविधाओं बढ़ाने के लिए, उतना समस्याएं बढ़ते जा रहा है. तो ये एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि भगवान हमको छल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि अगर आप कृष्णा भावना भावित जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, अगर आप सब कुछ मुझे अर्पित नहीं करेंगे, तो आप कभी आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे. नॉट पॉसिबल. कितना भी कितना प्रयास किया, सोचो आप, सो मच ऑफ एफर्ट, पूरा अमृत हाथ में आ गया, लेकिन अगर भगवान कृपा नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे. इसलिए शास्त्र आधारित जीवन व्यतीत करना बहुत जरूरी है. कहीं भी छोटा सा भी क्षति रहेगा तो उसका बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा ही ये व्यवस्था बना हुआ है. यू कैन नॉट एस्केप. देयर इज नो एस्केपिज्म. क्योंकि भगवान की नज़र में, भगवान के दृष्टिकोण से सभी जीव समान हैं. तो अगर हम कहीं भी इसके अंदर हस्तक्षेप करते हैं तो इसकी कीमत भरनी पड़ेगी हमको. जैसे दूसरे तरीके का छल हम देखते हैं चैतन्य लीला में. चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य, सो अद्वैत आचार्य को क्योंकि उम्र में बड़े थे तो काफी सम्मान से महाप्रभु उनको मिलते थे. लेकिन तो अद्वैत आचार्य तो ये चाहते नहीं थे. ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट कि इतना आदर देते हैं मुझे. वो तो चाहते थे कि उनको एक भक्त के रूप में रखा जाए, उनको शिक्षा करे भगवान. तो उन्होंने मायावाद का प्रचार करना शुरू किया अद्वैत आचार्य ने. और जब मायावाद का प्रचार किया तब महाप्रभु ने उनको डांटी लगाया और तब उनको आनंद मिलता है. तो ये उसी प्रकार का छल नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं. लेकिन चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को ऐसे ही ट्रीट करते थे, एक भक्त के रूप में नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा सम्मान्य व्यक्ति के रूप में देखते थे. तो ऐसे ही गोपियों के साथ भी भगवान ने किया. सब कुछ छोड़ छाड़ के जब गोपियां आ गई भगवान के पास तो भगवान वहां से अप्रकट हो गए. तो ये, लेकिन ये छल और जो ये अन्य अवतारों के छल है उसमें अंतर है. ये भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए लीला से हमको दिखाई दे रहा है. और दूसरे में छल हो रहा है वो भी दानवों के हित के लिए ही किया है. जो छल किया उसमें दानवों को नुकसान नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आ रहा है. जैसे कि कोई व्यक्ति अगर छल करता है तो खुद के हित के लिए करता है, वो शोषण करता है एक दूसरे का. लेकिन जब भगवान छल करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं. तो ये जो कथाएं हैं अद्वैत आचार्य और इनके साथ, ये तो सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि किस प्रकार से भगवान आनंद प्रदान करने के लिए कर रहे हैं. लेकिन दानवों के साथ जो छल किया वो भी दानवों के हित के लिए किया, ताकि वो भगवान पर आश्रित होना सीखे. और जो आश्रित भक्त हैं देव, किस प्रकार से भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं, ये भी हमको समझ में आए, ताकि हम समझ पाएं कि भगवान पे आश्रित होना ही सर्वश्रेयकर है हमारे जीवन के लिए. अगर हम स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे तो भगवान किसी ना किसी रूप से, हाँ कौन सा श्लोक है, मृत्यु सर्व हरश्चाहम. तो कितना भी हम योजना बना ले, हाँ हमने सुना था एक बार वो माइकल जैक्सन, एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्यकार और गायक था, तो उसके साथ 300 डॉक्टर चलते थे, 300, इतना धनी था, 300 एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट डॉक्टर उसके साथ हमेशा रहते थे. और सुबह से शाम तक वो केवल उनके भोजन में दवाई थी. किसी ना किसी प्रकार से उनको ऐसा था कि भाई मैं जवान रहूं, मेरा वृद्ध ना बनूं और अच्छा मेरा शरीर रहे, सुंदर दिखता रहूं. तो वो 300 डॉक्टर, सोचो आप, 300 डॉक्टर्स हमेशा उनके साथ रहते थे, बट मृत्यु सर्वहरश्चाहम. तो मृत्यु के रूप में भगवान सब कुछ हर लेते हैं। सो ये कोई निराकारवादी मतलब निरस्ता देने के लिए विचार नहीं है ये, कई लोग तो आप लोग मरने की बहुत बात करते हो, लेकिन ये तो वास्तविकता है, ये तो वास्तविकता है, मृत्यु तो आने वाला है। तो इसको अगर हम गंभीरता से लेंगे और भगवान की इन सूचनाओं को पालन करेंगे सो हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे, क्योंकि हम कितना भी प्रयास कर लें भगवान से ज़्यादा बुद्धिशाली हम नहीं बन सकते, ना ऐसा कुछ कर पाएंगे कि भगवान ने जो दिया है उससे बेहतर हम रचना कर देंगे, ये दोनों ही चीज़ संभव नहीं है। जो भगवान ने दिया है उससे बेहतर आप बना सकते हो? कोई अभी कोई गुलाब बना सकता है? कोई क्यों नहीं बना सकता है? छोटा सा गुलाब नहीं बना सकते? इतना सारा वैज्ञानिकों ने आगे प्रगति कर ली, आप मना कर रहे हो, सब बुरा मान जाएंगे वैज्ञानिक लोग, नहीं बना सकते राइट। छोटा सा गुलाब भी हम नहीं बना सकते, उसमें जो खुशबू है वो हम नहीं भर सकते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो भगवान की सृष्टि है उससे बेहतर हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट, उसमें कुछ हम ऐड नहीं कर सकते हैं, उससे कुछ बेटर नहीं बना सकते हैं। अगर हम वो करने जाएंगे तो भगवान अनुमति देते हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति खराब होती जाती है उससे। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट समझना कि हम कृष्णा को चीट नहीं कर सकते हैं, और कृष्णा के पास कई योजनाएं हैं ऐसी कि जो सामान्य रूप से हमारे जीवन में हमको मूर्ख बनाया जा रहा है। सोसाइटीज ऑफ चीटर्स एंड चीटेड, छलने वालों और छले जाने वालों की ये समाज बन गई है। अभी हर एक व्यक्ति दूसरे को कैसे छले उसी में लगा हुआ है, और भागवतम किसके लिए है? जिसको छल नहीं करना है। व्हाट इज द श्लोक? धर्म प्रोजितो केतो, जिस जो निर्मत्सराणाम, जिसके हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये अमल पुराण श्रीमद भागवतम है। तो इसका अगर हम भक्तों के साथ अधिक इसका वांचन करें, श्रवण करें, जैसे हम परसों एक क्लास सुन रहे थे प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि भागवतम की जो गुणगान या पढ़ना है वो स्वाभाविक है वृंदावन वासियों के लिए। वृंदावनवासी क्या करते थे? कृष्ण के गुणगान करते हैं, वो हर एक चीज में। गोपियां क्या कर रही है? कृष्ण वो पक्षी को भी देखती है तो बोलती है ऐसे संत, ये गए जन्मों में संत थे, ये भगवान के गीत गा रहे हैं। वृक्षों को देखते हैं, तो हर एक जीव का गुणगान करना कृष्ण की सृष्टि में, ये हमको शास्त्र सिखा रहे हैं। तो जब हम ये करना सीखेंगे तब हमारा भगवान के लिए प्रेम बढ़ना शुरू होगा। तो इस कथन से हम यही समझना चाहिए कि हम को कोई ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिए कि जो भगवान की व्यवस्था से विपरीत हो, नहीं तो हम छले जा रहे हैं। अगर कोई हमको बोलता है कि हम कुछ आपको बेटर प्रपोजल दे सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना भागवतम बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्या है फिर? देन व्हाट इज प्रैक्टिकल? भागवतम प्रैक्टिकल नहीं है, तो भगवान के अगर कथन है वही सही नहीं है तो सही क्या है और जीवन में? लेकिन ये सामान्य विचार हो गया है अभी। अरे प्रभु इतना, अभी हमने किसी को बोला था कि वो मुझे बोल रहे थे कि मैं वानप्रस्थ जीवन अंगीकार कर रहा हूँ, तो मैंने बोला वानप्रस्थ जीवन के बारे में जो भागवतम में लिखा है उसको पढ़िए। तो उन्होंने पढ़ा, गंभीर व्यक्ति ये पढ़ा उन्होंने, लेकिन फिर लिखा ये कि कलयुग में ये करना संभव नहीं है, तो भगवान ने दिया क्यों है ये? व्हाई कृष्ण हैज गिवन इट? अगर संभव नहीं है तो मतलब हम, ये बहुत आसान हो गया है बोलना हमारे लिए अब कि शास्त्र के कथन व्यवहारिक नहीं है। हाँ, इतना गहरा माया का प्रचार है कि ये मान लेना कि शास्त्र के कथन व्यवहारिक नहीं है सामान्य हो गया है, अभी बहुत सामान्य हो गया हमारे लिए। तो इससे हमको बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम शास्त्र के कथन का पालन नहीं करेंगे मतलब हम छले जा रहे हैं, वी आर गेटिंग चीटेड। सो ये न कि न प्रकार न इसको स्वीकार करना चाहिए हमको, और जो भगवान ने व्यवस्था दी है वो पूर्ण है, उस पूर्ण व्यवस्था के अनुसार कृष्ण भक्ति करने का हमको प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। सो हम जल्दी समाप्त इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ प्रसाद होता है 9 बजे, तो 5 मिनट प्रश्न उत्तर ले सकते हैं और प्रसाद में विलंब ना हो, इसलिए हमने 5 मिनट जल्दी शुरू कर दिया था। सो किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है तो बोल सकते हैं। यस माता जी।
तो क्या
हाँ बलि महाराज को छला गया, लेकिन जैसे हमने सुना कि भगवान छलते हैं उसमें भी जिसको छल रहे हैं उसका उद्धार होता है, सो उसमें बलि महाराज का कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो परम भक्त थे। तो हम लोग जो छलते हैं उसमें शोषण की भावना होती है, लेकिन भगवान तो सबके सुहृद है, सबके मित्र हैं, वो तो सबका भला चाहते हैं, तो उन्होंने तो उद्धार हेतु ये कार्य किया था। दैट वॉज द मेन थिंग। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।